हज़रत उमर फारूक के पास एक नौजवान बच्चा लाया गया, बूढ़ा बाप था उसके साथ। कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, इस बच्चे को बताइए कि बाप के क्या हकूक हैं, ये नाफरमान है। इससे पहले कि हज़रत उमर उससे कुछ पूछते, उस बच्चे ने क्या कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं आपकी सब बातें सुनूंगा, लेकिन अब मुझे एक सवाल का जवाब पहले दे दें। और वो क्या है कि बाप होने के नाते इस शख्स की क्या जिम्मेदारी थी, या बेटा होने के नाते मेरे क्या हकूक थे? तो हज़रत उमर ने सिर्फ तीन हक बताए थे। पहला हक ये था कि तुम्हें एक अच्छी माँ देता, फिर दूसरा हक ये था कि तुम्हारा अच्छा नाम रखता, और तीसरा ये था कि तुम्हारी अच्छी तरबियत करता। तो बच्चे ने कहा कि फिर रुक जाइए, मेरे बाप ने मेरे तीनों हक नहीं दिए, क्योंकि पहला हक उसने मेरा क्या मारा कि उसने मुझे एक अच्छी माँ नहीं दी, इसने एक मजूसी यानी फायर वर्शिपर, आग की पूजा करने वाली औरत से शादी की, मुझे अच्छी माँ नहीं मिली। इसने मेरा नाम ज्वाला रखा, और ज्वाला कहते हैं कीड़े को, ये जो जाले लगते हैं ना वही लफ्ज है, यानी बेमानी सा नाम रखा, और अरबों में ऐसे नाम आम थे। तीसरी बात है कि चूंकि मेरी माँ गैर मुस्लिम थी तो उसने मेरी तरबियत अच्छी नहीं की। तो हज़रत उमर ने उसकी ये बात सुनकर कहा कि ऐ शख्स, इस बेटे को ले जाओ, कसूर इसका नहीं तुम्हारा। तो अफसोस के साथ कहूंगी, हिसाब किताब करने निकले थे कि कुछ लेकर आएंगे और हाथ से देना पड़ गया। अफसोस के बाद कि आज हम अपने बच्चों के बिगाड़ का तذکرہ करते हैं, हम उनको महफिलों में भी ये सोच के ले जाते हैं कि जाकर जरा इनको बेइज्जत करें और शर्मिंदा करवाएं, और दर्स देने वाली या वाले के कान में कहें कि जरा इसको समझाएं। यदि अल्लाह का हक बच्चे ना दें तो इतना हमें गुस्सा नहीं आ रहा होता जितना वो हमारा हक ना दें तो आता है। तो आइए जरा तरतीब के साथ कुछ गलतियां जो बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर से मुतल्लिक है, मैं इस वक्त रिलीजियस पेरेंट्स और नॉन रिलीजियस की बात नहीं करूंगी। लेक्चर का जो ये वाला पार्ट है ना, ये सबके लिए है, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम, रिलीजियस नॉन रिलीजियस, प्रैक्टिसिंग या नॉन प्रैक्टिसिंग। याद रखिए कि एक बच्चे की तरबियत माशरे में एक अच्छे फर्द का इजाफा करेगी या उसके एक बुरे फर्द होने का इजाफा करेगी, आपकी मर्जी है आप क्या करें। ठीक है, जानते हुए नहीं लेकिन अनजाने में, लाइलमी में, भूल पने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं बच्चों के माँ बाप से, जिसकी वजह से बच्चों की पर्सनैलिटी क्रश हो जाती है, फ्यूचर में वो माँ बाप के लिए भी गलती का जरिया बनती है। उनमें से सबसे पहली गलती जो मैंने आपके लिए यहाँ नोट की है, तरबियत की 10 गलतियाँ जिनसे बचना ज़रूरी है। पहली गलती के दूसरों के साथ मवाजना करना। कुछ पेरेंट्स की ये आदत है, और मैं माजरत के साथ कहूँगी ये हमारे देसी माँ बाप की बुरी आदत है, अक्सर अपने बच्चे को कहते हैं फलां को देखें, वो भी आपकी उम्र का, उसके नंबर देखें कितने आए हैं, कितने अच्छे नंबर ले, देखें वो कितना जहीन है, ये जुमले आप बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी अपने ही दूसरे बच्चों से, यानी बड़े भाई से छोटे भाई का तकाबुल कर रहे होते हैं, बड़ी बेटी से छोटी का कर रहे होते हैं, आप घर में ही एक दुश्मन पाल रहे हैं। और मैंने ये सारी बातों के लिए ना, मैंने कुछ चीज़ों को स्टडी किया ना, तो एक यंग बच्चा कहता है कि मेरी माँ मुझे हर वक्त बड़े भाई के साथ इस तरह कंपेयर करती थी कि एक वक्त ऐसा आया था कि मेरा दिल करता था कि मैं छुरी लेके बड़े भाई का गला काट दूं। आप घर में दुश्मनी पाल रहे हैं, ये चीज आपके बच्चे को खिल कर देगी जब आप अपने घर में करते हैं। दूसरी बात है कि आप दूसरों के बच्चों से रिलेट कराते हैं, बहन के बच्चे, सहेलियों के बच्चे, स्कूल फेलोज। तो यहाँ नोट कीजिएगा, नंबर एक, हर बच्चा एक मास्टरपीस है। कितने फ्रूट्स हैं आपके पास आजकल मार्केट में? कीनू, मौसमी, संतरा और फ्रूटर, एक जैसे चार फ्रूट मैंने बोले हैं। सच बताइए, क्या चारों का एक ही टेस्ट है? चारों का जूस एक ही साइके का होता है? हालांकि ये सब सेम स्पीशी है। और अगर मैं कहूँ कि सेब और कीनू एक ही चीज़ है, केला और अमरूद, आपके बच्चे आपका फल है, फ्रूट्स हैं ये। एक हमने दरे कुरान किया था तो उसमें एक बारे में मैंने एक पूरा थीम दिया था कि बच्चे वो हमारे फल हैं, जिगर के टुकड़े हैं जो जमीन पर चल फिर रहे हैं। औलादुना अस्मारुना, हमारी औलाद हमारा फल है। तो पहली बात नोट कीजिए, आप मदर्स और पेरेंट्स से कहूंगी, हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। आप सारी उम्र सेब को ताने देती रहे तो वो केला फिर भी नहीं बनेगा, आम नहीं बनेगा। क्या सारे फल आम बन सकते हैं? और अगर सारे फल आम बन गए तो फ्रूट चाट कैसे बनेगी? ये जो मिक्स फ्रूट चाट या मिक्स सैलड का तस्वूर है, ये क्या है, वैरायटी है? आपको बीइंग अ मदर और फादर अपने हर बच्चे को स्टडी करना चाहिए। मैं अक्सर बच्चों की तबीयत को या उनकी फितरत को मसख होता जब देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ अल्लाह तूने कितने बेकदरों को औलाद दे दी। और मैं कह सकती हूँ कि अनजानपने में, भोलपने में, नासमझी में या कुछ भी मैं कह दूँ, हमारी पर्सनैलिटी में से आधी से ज़्यादा चीज़ें हमारे पेरेंट्स नासमझी की वजह से हमारी ख़त्म कर देते हैं। मैं एक मिसाल देती हूँ, कभी आपने सुना होगा कि अगर सेल या बैटरी जिसको आप कहते हैं अगर अंदर ही छोड़ दी जाए ना, घड़ी में तो चलती है लेकिन जैसे मिसाल है वेइंग मशीन है तो वो ख़त्म हो जाती है। कभी आपको ऐसी मशीन बंद करके रखे ना तो कहते हैं कि इसके सेल निकाल दें तो बच जाएगा, रखा रखे ना तो ज़ाया हो जाती है। एक हमारी सिस्टर थी तो उसने बड़ी अक्लमंदी की, उसने कहा कि बाहर निकाल दूंगी ना, गोल छोटी सी बैटरी होती है तो गुम जाएगी, तो उसने उसको उल्टा किया और उल्टी करके उसी जगह बंद करके रख दी, समझ रहे, क्योंकि उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, या वो एक नेगेटिव पॉजिटिव था तो उसने सेल निकाल कर ना तो कहा कि अच्छा ऐसे तो ज़ाया हो जाएगा ना, तो उसको उलट करके रख दिया। आपको पता क्या हुआ कुछ माह बाद, वो सेल तो ख़राब हुआ, वो मशीन भी ख़राब हो गई। बिल्कुल इस मिसाल से समझिएगा, हैंडल विद केयर्स, दीज आर फ्रेजल्स। आप अगर माँ हैं या बनने वाली हैं, या अगर आपके अब यंग बच्चे हैं या ग्रोइंग बच्चे हैं, आप उनकी पर्सनैलिटी को कभी दूसरों से रिलेट ना करें। बच्चों की उनकी कमजोरियां गनवाने से बेहतर है कि आप उसके पास बैठें। मैं साथ साथ सोल्यूशन भी देती जाती हूँ, इसकी मदद करें पढ़ाई को, उसके लिए अच्छा मिसाल है। बड़ा भाई बहुत पढ़ाकू है और अक्सर बड़े वाले पढ़ाकू होते हैं, सीधे भी होते हैं, कमगो भी होते हैं, दूसरा तेज होता है। जाहिर है कि लेटेस्ट मॉडल है ना, आईफोन 3 जब आया था वो और आईफोन 15 का रिलेशन तो कोई नहीं है। और मैं अक्सर माँ को जब बच्चों के ऐसे शिकवे करते देखती हूँ तो मैं उन्हें कहती हूँ कि अच्छा पैदा कर लेती, आपने पैदा किया है, अब बातें क्यों करती हैं, कभी ना करें, आपका बच्चा अंदर से खत्म होगा। मिसाल है दूसरा बच्चा शरारती है बहुत, पहला चुप करके पढ़ता, आप उसको कोसती रहे, वो तो चुप करके पढ़ता रहता था, मैं उसको पेंसिल देती थी वो तो हिलता नहीं था, अब वो क्या करेगा। अब आप देखिए, एक में वोल्टेज ज्यादा है एक में कम है तो जलेगा। आप जो बच्चा एक्टिव है ना उसके लिए गेम्स की स्टाइल में पढ़ाएं, वो एक्टिव, उसको एक्टिव बनाएं, उसे एतमाद दें, उसे बिठाएं, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन डोंट कंपेयर। अच्छा मैं आप साथ वादा तो नहीं करती आपसे, लेकिन बास खवातीन अपने शोहरों को भी इसलिए ज़ाया कर देती हैं। वो मेरी बहन का मियाँ देखे वो कैसा, वो आपने अपने बहनोई को देखा, वो आपने अपने भाई को देखा। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, कंपैरिजन किल कर देता है। अपने बच्चों का मुकाबला दूसरों से ना करें, कभी ना करें। इनकी कारकर्दगी को, इनके इल्म को बढ़ाइए, इनके सब वक्त गुजारें, इनकी मदद करें, आप देखेंगे कि आप उनको कॉन्फिडेंस दें। और अगर साथ ही माँ बाप के ताल्लुक की भी बात कर लूँ ना, क्योंकि बच्चों पे ये भी बड़ा गहरा असर डालता है, तो ये भी मैं आपको बता दूँ, अगर आपके हस्बैंड में कोई कमी है और आप ऊपर से उनको ये ताने मार रही हैं, वो और गुसीले हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। सब मर्द आपके बहनोई जैसे नहीं हो सकते और सब मर्द आपके भाइयों जैसे भी नहीं हो सकते। अक्लमंद बीवी या अक्लमंद माँ वो है कि जो अपने मुकाबल पे जो भी रिश्ता है ना उसकी पर्सनैलिटी को समझे। आप छोड़िए बाकी काम, बच्चों को पढ़े, कोई किताब ना पढ़े, बच्चे को पढ़े कि किस बात से खुश होता है। और इसमें पूरी पूरी वर्कशॉप्स मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पेरेंटिंग ए टू जी, हमने आज से शायद 5-6 साल पहले ये टॉपिक किया था, आज भी वेबसाइट पे मौजूद है। लेकिन पहली गलती तकाबुल है, कभी ना करें। और फिर वो तकाबुल हम कैसा करें, कि करें भी उसके दोस्तों से, नहीं करें। जिसके साथ आप तकाबुल करेंगे ना, आपका बच्चा उसका दुश्मन हो जाएगा और उसको अपने रास्ते की एक रुकावट या एक रोड़ा समझेगा। आप उस बच्चे को बेहतरीन तरीके से रखिए। और हम तो बड़े होकर कंपैरिजन में दीन के नाम पे भी कंपैरिजन ही कर रहे होते हैं, तो ये अच्छी आदत नहीं। आगे चलते हैं ताकि मैं एक दफ़ा गो थ्रू करा दूँ, एंड पे मैं सबको सम अप करा दूंगी। दूसरी गलती जो अमूमन माँ बाप से होती है वो क्या है, कि अपने बच्चे को जिम्मेदारियाँ नहीं उठाने देते। मसलन बच्चे को हमेशा छोटा समझते हैं, ये तो भी छोटा है, मासूम है, ना समझ है, उन पे एतमाद नहीं करते। यानी आप खुद अपने ऊपर देखिए कि अगर आपका बच्चा आपको कुछ ऐसा काम कहे कि मैं कर सकता हूँ, आप कहते रहने दो, तुम क्या करोगे। छोटे और मासूम समझते हैं, हल्की सी भी जिम्मेदारी नहीं डालते, और बस तुम पढ़ो, और जो मैंने एक बड़ी अजीब चीज देखी है, माँ की बच्चे का बैग खुद उठा के स्कूल से आ रही है, गाड़ी से बच्चा बैग खुद नहीं निकाल रहा, नहीं नहीं ये गिरा देगा, ये उठा देगा, वो कर देगा। आप पता है कि जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि बच्चों से छोटे छोटे काम कराने चाहिए, बच्चे माँ बाप का हाथ बटाएं, चलो तुम ये चीज़ उठाओ, चलो बेटा आप ये कुशन्स उठाइए, बेटा आप ये उठाइए। इससे फ़ायदा क्या होता है, आप सब अपने माशरे में अपनी बहनों, खालाओं, फुफियों को देखिए, वो माएँ जिन्होंने अपनी बच्चियों को 5-6 साल की उम्र में अपने साथ लगा लिया, आज वो माएँ राज कर रही हैं, रानियां बनी हुई हैं और बेटियां काम करती हैं। आज के इस दौर में एक जो बहुत बिग प्रॉब्लम मैंने देखा है, जवान बच्चियां काम नहीं करती, आराम फरमाती हैं, माएँ जागती हैं जिस वक्त बच्चियां उस वक्त सोती हैं, सारी रात जागना और सुबह फिर फजर से पहले सोना और फिर 2-3 बजे तक सोना। घर में मेहमान आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, डॉक्टर आ जाए, कोई बीमार हो जाए, बच्चे को अपनी उठा सकते हैं, ये माँ बाप की गलती है, ये बच्ची को एक दिन में इसकी आदी नहीं हुई, ये माँ बाप की गलती है। आप जिम्मेदारियां नहीं देते उनको, आप ये सोचते हैं ये छोटे हैं, ये छोटी हैं। देखिए आप सब इस बात की गवाह हैं ना, मेरा तो गुमान है आप में से अक्सर ने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में परवरिश पाई होगी, घर में दादी भी होती थी, चची भी होती होंगी, किसी की बुफो भी होंगी जिनकी बाद में शादी हुई, बच्ची ऐसी सीख जाती थी। चाय बनाते थे आप अपने वक्त में मेहमानों के आने पे, अम्मी मेहमान के सामने बैठ कर हाथ से इशारे से क्या, ये थी चाय, और ये क्या थे, बिस्कुट, और एक और शेप होती थी, ये समोसा था। मेहमान को पता भी नहीं लगता था, माँ पास बैठी इशारों में बच्चियां चाय पानी पिलाती थी। क्या जरूरत है कि कोई बच्चा अंदर कोने में घुसा रहे। आज माँ की दोस्तें आ जाएं या माँ की उम्र के लोग आ जाएं या बच्चों की पसंद ना हो उसमें या बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई रिश्तेदार हो या दोस्त साथी अहबाब हो, बच्चे बच्चियां पास नहीं आते। और कभी पूछे ना कि अच्छा वो बच्ची घर नहीं है, मतलब कोई नाम भी ले लीजिए, आयशा घर नहीं, वो सो रही है, वो सब उसके पेपर बहुत है ना, वो सारी रात पढ़ती है। ये फातिमाएं और आशाएं और खदीजाएं अगर कोई इधर बैठी है ना, तो हमें भी पता है कोई नहीं सारी रात पढ़ता, हम भी कोई नहीं थे पढ़ते, पहले तो खुद किताबों में पढ़ना होता था पहले दौर में, तो आज तो फोन हाथों में, वो पता नहीं क्या क्या पढ़ने लग जाए, फेसबुक पे एक दफा घुस जाए तो आपको तो भूल भुलैया मिल जाए, सुबह होने तक वापस आ जाएंगी तो बड़ी बात है, वो आधे खानदान को दोस्तों को मिलाएंगी फेसबुक पे और घर वालों का हाल भी नहीं है। तो आप सबको कहूँगी अपने बच्चों पे जिम्मेदारियाँ डालें। आप बेटियों के पर जिम्मेदारी क्या, आप क्यों उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैंने कल के भी लेक्चर में एक जुमला बोला था कि अगर आपका बच्चा या बच्ची 10 साल का है ना, आज एक कोट वर्ड ले लें, उनको बड़ा समझें, 10 साल के बच्चे से नीचे के बच्चे को +5 कर लें, यानी 9 साल का बच्चा है तो उसको 14 साल का समझिए, 8 साल का बच्चा है तो आप उसको 13 साल का समझें, ठीक है, 10 साल के बच्चे को आप चलिए 14 साल का समझ लें, और 10 से ऊपर 11 से लेकर ऑनवर्ड बच्चे को आप प्लीज प्लीज 7-8 साल बड़ा कर लें, और 15 साल की उम्र पे पहुंचने के बाद अपने बच्चे को 10 साल बड़ा कर लें। वक्त बदल चुका है, आपके दौर में 10 साल की उम्र में जो भोलपन था ना वो अब नहीं रहा, एक्सपोजर नहीं था, सादगी थी, भोलपना था, आज बदल गया है। आपके बच्चों को अल्लाह ने वो माहौल दिया, कंप्यूटर उनके हाथों में, सोशल मीडिया पे वो गूगल करते फिरते हैं, अपने बच्चों को बड़ा समझे, ये गलती करते हैं, मुन्ना है, बेटा है, छोटा है। मेरे साथ एक बड़ी दिलचस्प वाक्य आया, एक आप ही जैसी महफिल थी तो एक दर्स में औरतें आई हुई थी, तो जब लेक्चर पूरा हुआ तो आ गई मेरे पास, तो बड़ी खुश, तो कैमरा पकड़ के खड़ी हो गई, मैं आपकी फोटो ले लूं। मैंने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह आप क्या कर रही हैं। कहती नहीं वो मैंने अपने बच्चे को दिखानी है। मैंने कहा बच्चे को दिखानी है, अभी उस शहर में 2-3 और भी दर्स थे। मैंने कहा कल आप अपने बच्चे को साथ ले आइएगा, वो खुद ही देख लेगा। कहती मैं उसको ले आऊं। मैंने कहा क्या उम्र है बच्चे की। कहती 22 साल। अब मुझे बताया जिस बच्चे को आप 22 साल का बच्चा कहेंगी तो वो फिर उसकी शादी कैसे करेंगी 22 साल की उम्र में। ये गुड्डू है, ये पप्पू है, ये नन्ना है, ये बच्चा पता नहीं क्या, कुछ बच्चे नहीं है ये, आज का बच्चा कल का बाप। हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमारे लड़के, मैं थोड़ी लड़कों की भी मदद कर दूं, आपके 15 साल के बेटे को, 15 ईयर्स ओल्ड बेटा है, सच बताइए क्या उसको सब्जी खरीदनी आती है, ग्रोसरी खरीद सकता है। जाओ बेटा कैप्सिकम लेकर आओ, जिसको शिमला मिर्च कहते हैं, नहीं ला सकता, उसको बासी कहीं नहीं पता, दुकानदार भी शुक्र करेगा कि चलो आया कोई लेके चला गया। तो जरूरत इस बात की कि बच्चों पे जिम्मेदारियां डाली है। तीसरी चीज पे चलते हैं, इसमें भी हम मुस्लिम पेरेंट्स और स्पेशली देसी पेरेंट्स बहुत इनसिक्योर है, और वो क्या है कि बच्चों को नई चीजें दरियाफ्त करने की इजाजत नहीं देते। आप देखिए कि आपने अपने बचपन से लेकर आज तक देखा होगा कि घर में नया खिलौना आए, बच्चा फौरन उसको पकड़ के खोलना शुरू करता है, तोड़ता है, फोड़ता है, करता है ऐसा। खेल बच्चे का पसंदीदा मशगला होता है, दिलचस्प पसंदीदा होता है। अब वो जब उसको खोल रहे हैं ना, वो असल में उसमें से देखना चाह रहा है कि ये काम कैसे कर रहा है। यहाँ अल्लाह से एक दुआ करते हैं कि बींग अ मदर, अल्लाह हमें हमारी खराबियाँ और हमारी कमियाँ याद दिला दे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हम में से अक्सर लोग अपने बच्चों को रिस्क नहीं लेने देते। मैंने इसमें गोरों को बहुत आगे देखा है। 4 से 5 माह के बच्चे को केला पकड़ाकर उसके आगे मैट बिछा देती हैं और कहती हैं खाओ। मैंने जहाज में एक बाद में पूछा बच्चे की उम्र, ना लग तो वो माशाल्लाह कुछ 7-8 महीने का लग रहा था, घुपला मुपला, लेकिन माँ से पूछा तो उस तकरीबन 5 कुमा का था। उसने उस बच्चे के आगे ट्रे खोली, प्लास्टिक बिछाया, केला खोल के दिया। वो फिर उसने जो खाया, यकीन करें उसने एक कतरा जाया नहीं किया। हमारी माएँ 10-10 साल का होने पे बच्चों के मुंह में निवाले डालती हैं। मैं ऐसे बच्चे को जानती हूँ जो बाप बन चुका है लेकिन अभी उसको निवाले मिलते हैं। फर्क पता क्या, पहले मामा मुंह में डालती थी, अब बीवी डालती है। खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए, बच्चों को बड़ा बने दीजिए। हम बच्चों को सवाल करने से रोक लेते हैं। आप उनके अंदर के तजस्स के मादे को गलत तरफ जाने की बजाय उसको अच्छा जवाब दीजिए। बच्चे जितनी चीजें तोड़ेंगे फोड़ेंगे उतना इंशाल्लाह उनको फायदा होगा। फिर आप देखिए कि हम उनको गलतियां नहीं करने देते। हालांकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम सबसे ज्यादा अपनी गलतियों से सीखते हैं। फिर अगली एक और गलती पेरेंट्स से क्या होती है कि बच्चों पर अपनी राय और फैसले मुसल्लत कर देते हैं, पहले उनके पढ़ने के मामले में, फिर कैरियर में, फिर शादी में। हाफिज बनाना, अपने अधूरे अरमान बच्चों में पूरे करते हैं। माँ बाप की बहुत बड़ी गलती लिख लीजिए कि जो मैं नहीं बन सकी मैंने बच्चे को बनाना है। मुझे बड़ा शौक है मेरा बच्चा हाफिज हो, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हर बच्चा हाफिज नहीं होगा। अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने पर मजबूर मत कीजिए, और खास तौर पर बेटियों को चंद खास चीजों के साथ जोड़ देना। हम अपने पुराने ख्याल अपने बच्चों पे थोपने लग जाते हैं और नतीजा पता क्या होता है कि बच्चे परेशान होते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बातें चीतें चलती हैं तो वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें गलत चीज पर डाल दिया। चूंकि एजुकेशन हमारा फील्ड है तो बच्चों को माएँ हाफिज बनाने के लिए ले आती हैं। नहीं बनना था उसने हाफिज, उसमें एबिलिटी नहीं है, उसका इतना अटेंशन स्पैम ही नहीं है जितना हिफ्ज के लिए चाहिए होता है। फिर जब माँ बाप को बुला के काउंसलिंग की जाती है तो कहती नहीं, इसकी नानी की ख्वाहिश थी, इसकी दादी की ख्वाहिश थी, ये जब पैदा हुआ था तो हमने नियत की थी। अच्छी बात है, लेकिन अगर वो हाफिज नहीं बन सकता आप उसको इल्मी मैदान में आगे ले आइए। तो कभी बच्चों पे सख्ती ना करें, आप अपने बच्चों को किल कर देंगे। कोई बच्चा डॉक्टर बनने के लिए नहीं बना हुआ तो क्या वो नाकाम है? क्या सारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे? नहीं बनेंगे। आप अपने बच्चों को काउंसलिंग के जरिए पहले परखें, फिर समझें, फिर उनको काम दें। इसी तरह बेटियों के साथ भी मामला हो जाता है। फिर इसी तरह एक और हमारी खराबी क्या है कि बच्चों के साथ बेजा सख्ती की जाती है, या तो या बेजा लाड़ किया जाता है। ये ऐसे है जैसे सी सॉ, बिल्कुल एक एज पे कभी दूसरे एज पे। ऐसा करने से बच्चों का एतमाद खत्म हो जाएगा, उनकी कारकर्दगी और कुव्वते फैसला मुतासिर होगी, वो कभी चूज नहीं करेंगे। मैंने देखे 12-12-15 साल के बच्चे खुद कपड़े नहीं निकाल के पहन सकते, अम्मी निकाल के देंगी। बेटियों को नहीं पता, चूज नहीं कर पाती। खरीदने में नहीं बच्चों को आपने कभी राय में शामिल किया होता। करना क्या चाहिए, नैरो करें। ये जो मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ ना, ये आपको पेरेंटिंग ए टू जी में डिफरेंट टॉपिक्स के अंडर काफी कुछ मिलेगा। टीनेजर बच्चों के साथ कैसे बात करें, उससे वाले बच्चों से कैसे डील करें, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में हमने इस टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास 2 दिन थे डिस्कस करने को। यहाँ बस मैं आपको जनरल बातें दे रही हूँ कि अपने बच्चों को फैसला करने दें। बड़ा फैसला नहीं, 2 चीजें चूज करके कि बेटा बाप इसमें से चूज कर लो। हम कहीं गए, हमारे साथ एक बच्चा था, तो जब उन्होंने कुछ सर्व किया ना तो डिस्पोजेबल ग्लास थे वहां, तो बच्चे ने पूरा स्टैक पकड़ लिया, 10-12 ग्लास। ये तो मैं लूंगा, ये तो मैं घर लेके जाऊंगा। तो माँ भी शर्मिंदा हो रही थी, तो जो मुखोस थी उसने कहा नहीं नहीं मना नहीं करे। तो मैं भी पास कहने का, मैं ये सारे लूंगा। तो मैंने उसमें से ना 2 ग्लास निकाले, मैंने बोला कि आपने बेटा एक लेना है, ये 2। तो बच्चे ने जल्दी से 2 पकड़ के 2 ले लिए, वरना वो 12 ले रहा था। मैंने क्या किया, उसको चॉइस दी, वरना मैं उसको कहती आपने एक ही लेना है या आपने दो ही लेने हैं, तो रोता। तो ये साइकिक चीजें हैं, बच्चों पे बेहद सख्ती नहीं करनी चाहिए। बच्चों की जो शुरू की उम्र है ना, 8-7 साल से पहले की, इसमें आप उनको उनकी मर्जी करने दें, लेकिन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। वरना याद रखिए कि बच्चों के अंदर से एतमाद खत्म हो जाएगा, उनकी कारकर्दगी और उनका कुव्वत फैसला जो है वो कम भी होता है, वो ढेरे समय रहेंगे। कभी बच्चों से बात करें वो डर जाते हैं, कहते पता नहीं, अम्मी को पता है, अब्बू को पता है। अब्बू का नाम सुन के बच्चे कोनों में घुस जाए, नहीं जी वो रिस्पेक्ट बड़ी करते हैं, शख्सियात खराब हो जाती हैं। याद रखिए कि दुनिया का सामना करना है इन बच्चों ने, कल आप नहीं होंगे, आप हैं, इनको गलतियां करने दीजिए, गिरेंगे उठ जाएंगे, लेट देम ट्राई, गलती होगी तो ठीक काम भी करेंगे, और वरना सारी जिंदगी पीछे चलेंगे। फिर आपने एंड पे कहना थले लग गया, पीछे लग गया, बहुत लाड करेंगे तो सरकश होंगे। ये बहुत बड़ा फितना मैंने आज देखा है, क्योंकि नेमतों की फरावानी है। टीवी के इश्तेहारात, कहीं चिप्स और कहीं बिस्किट और क्या क्या स्नैक्स दिखाते हैं, बच्चों की हर बात मत मानिए, जिद्दी हो जाएंगे, बदतमीज हो जाएंगे और खुद सर हो जाएंगे। फिर इसी तरह से एक और बहुत बड़ी गलती है, बचपन में ही बच्चों को असूल और कवानीन का पाबंद नहीं करते, हदूद का तय्यन नहीं करते। आप ये लिख लीजिए कि हदूद का तय्यन कीजिए, लेट देम दी लिमिट्स। बेटा आप इससे आगे नहीं जा सकते, आप ये कर सकते हैं और आप ये नहीं कर सकते। इससे इंशाल्लाह सही और गलत का फर्क उनको पता लगेगा। फिर एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, उनकी बदतमीजियों पे हंसते हैं, फिर सबको सुनाते हैं इसने ये किया, वो एक्शन रीप्ले करते करते उस बच्चे को पक्का करा देते हैं उसी चीज में। फिर कभी गलत हरकत की तो नजरअंदाज किया, वहां चुप कर जाएं, घर आके उसको कमरे में अकेले बैठकर समझाएं। कभी अपने बच्चों को दूसरों के सामने मत शर्मिंदा करें। आपके बच्चे का दोस्त एक आम बच्चा होगा, उसके लिए वो प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ी पर्सनैलिटी है। आपकी बच्ची की सहेली आपके लिए कुछ नहीं है, पर आपकी बच्ची के लिए वो दिन रात के उसके ख्वाबों में बसने वाली शख्सियत है। कभी बेइज्जती ना करें। एक बच्चे ने कहा कि मेरे अब्बू हमेशा तकाबुल करते थे, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी शक्ल को दूसरों से कम कहते थे, फिर जरा मैं बड़ा हुआ तो मैं स्कूल में गया तो मेरे ग्रेड दूसरों पे कम करते थे, फिर जब मैं बड़ा हुआ और मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी को दूसरों से कमतर समझते थे, फिर मेरे बच्चे हुए तो वो मुझे सुस्त और निकम्मा कहने लगे, हत्ता कि मेरी बीवी के सामने मेरी बुराई करते हैं। यकीन कीजिए कि अपने बच्चों को, शादीशुदा बच्चों को आप तंग नहीं कर सकते, वरना वो आपसे दूर हो जाएंगे। हल कह के बच्चों को इस्लाम सिखाइए, इस्लाम उनको सब सिखाएगा। हजरत उमर फरमाया करते थे कि अपने बच्चों को कुरान सिखा दो, कुरान उनको सब कुछ सिखा देगा। छोटी उम्र से बच्चियों को हया का आदी रखें, ये एक माँ बाप की गलती है। छोटी बच्चियों को ऐसे कपड़े पहना देते हैं जिसमें आप उनको बड़े होके नहीं देख सकते, फिर आप कहते हैं ये टाइट्स पहनती है, इसके घुटने खुले हैं, इसके शोल्डर्स खुले हैं, कपड़े ऐसे हैं। अब वो आदी हो चुकी है, उसकी हया खत्म हो गई है। कल जो नहीं देख सकते आज उसका रास्ता ही ना दिखाए, निप दाइवल इन द बर्ड। फिर अखलाक, आदाब, मैनर्स, प्यार करना, मोहब्बत सिखाना। फिर एक और बहुत बड़ी खराबी देखी गई है कि बच्चों को ओवर सेंसिटिव कर देते हैं, हसास। कुछ लोग इतना ही एहसास कमतरी में जाते हैं, नो आई एम सो सेंसिटिव। पहले तो अपने बच्चों से ये सेंस निकालिए। आपको पता है कि सो सेंसिटिव होने का मतलब क्या है? पिटी फीलिंग। जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो कभी अल्लाह के काम नहीं करते, वो अल्लाह की मर्जी का बनते ही नहीं, वो सेल्फ सेंटर्ड बने रहते हैं। छोटी छोटी बातों पे बच्चों को आप पॉइंट आउट करेंगे या बेजा उनके नखरे उठाएंगे, बच्चे मगरूर हो जाएंगे। असल बात है कि बच्चों के अंदर जज्बात की कदर सिखाएं, नानी के, दादी के, घर वालों के खिदमत करना सिखाएं। एक और गलती लिखे, आज के पेरेंट्स की कॉमन गलती, खिदमत करना नहीं सिखा रहे तो दुआएं भी नहीं ले रहे बच्चे। पहले घर के बुजुर्गों को बच्चे दुबाते थे, उनके पास बैठते थे, उनको वक्त देखते थे। अब आपने 4 मासियां रख दी, आप अच्छे बेहतरीन खाने दवाइयां भी देंगे, लेकिन बूढ़े दवाइयों से नहीं ठीक होते, मशीनों से, दबाने वाली चीजों से बूढ़ों को फायदा नहीं होगा। आपने बच्चों को दुआएं दिलवाइए, खुद भी और बड़ों के भी दुआएं। फिर इस तरह माँ बाप का बच्चों के सामने झगड़ना खुद, ये तो एक बुरा इशू है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं कि माँ बाप के हालात ठीक नहीं थे। कभी अपने इख्तलाफात को, चाहे आपके ससुराल से हैं चाहे शौहर के साथ है, बच्चों के सामने डिस्कस ना करें, बुरा ना कहें एक दूसरे को, वरना पता क्या होगा कि आज बातें बुरी हो रही हैं कल हाथ उठेंगे। बच्चे को मारना, कई लोगों को देखा गया, शादीशुदा बच्चे तक को भी हाथ लगा देते हैं, बहुत अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं, मुजरिम तक बन जाएंगे। फिर एक और बहुत बड़ी खामी, हमारे कल्चर में बच्चों की राय नहीं लेते या फिर सब कुछ उनसे ही करते हैं। पहले दौर में माँ बाप बच्चों को अदब सिखाते थे और बच्चे माँ बाप से दबके रहते थे। आज माँ बाप बच्चों से डरते हैं। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात भेजी कि अगर माँ बाप से ज़्यादा बच्चे कमाने लग जाएं, यानी वो बच्चे जिनकी कमाई अब माँ बाप खा रहे हैं मसलन, इस पर इंशाल्लाह एक और लेक्चर में फ़र्क रखूंगी कि बच्चे जब तक आपके अंडर होते हैं तो उनके साथ क्या मामला करना चाहिए, बच्चों के साथ तजस्सुस करना है नहीं, उनके सेलफोन आप देख सकते हैं कि नहीं, या आप उनके कमरे में कभी उनकी अलमारी चेक कर सकते हैं कि नहीं। और दूसरी सूरत यह है कि बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट है, दोनों का फर्क नोट कीजिए। जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर होती है तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं उनसे कि कहीं औलाद नाराज ना हो, लेकिन जब औलाद ईमान की दौलत से अमीर बन जाए तो औलाद डर डर के माँ बाप से बात करती है कि कहीं माँ बाप नाराज ना हो। आज मैं अपनी बात इस बात पे पूरी करूँगी कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। क्या मैं अपने बच्चों की राय का एहतराम करती हूँ इतना कि अल्लाह और रसूल की बात पीछे कर दूँ? आज हमारा एक बच्चा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करने पे हमें मजबूर कर सकता है, खास तौर पे खुशियों के मौकों पे। एक खानदान के फर्द को खुश करने के लिए हम अल्लाह रसूल को नाराज कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब हम बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, बाज दफा उनकी किसी ऐसी चीज को जो बचपन में कभी हो गई उससे भी उनका नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात, कॉल और फेल का तजाद, बच्चों के सामने वो कहना जो करते नहीं। लिमा तकूलूना मा ला तफअलून, कबुर मक्तन इंदल्लाही अन तकूलू मा ला तफअलून। खुद झूठ बोल रहे हैं और बच्चों को कहते हैं झूठ ना बोलो, खुद नमाज नहीं पढ़ रहे बच्चों को कहते हैं नमाज पढ़ो, खुद सादा कुरान नहीं पढ़ते और बच्चों को कह रहे हैं कि आप हाफिज बन जाओ, खुद दुनियादार हैं और बच्चे को दीनदार कहते हैं नहीं। तो अल्लाह ने आपको मुझे ये सिखा दिया है। अब सिर्फ चंद दो तीन मिनट में आपको एक चेकलिस्ट देने लगी हूँ कि फिर हम अपने बच्चों में जब कोई गलत चीज़ देखें तो उसकी सलाह ना करें, छोड़ दें उनको, नेट पे जिधर जा रहे हैं जाएं। तो गलतियों की सलाह कैसे करें? नंबर एक, बच्चों के मिजाज को पहचानिए। कोई प्यार से मानते हैं, कोई गुस्से से मानते हैं, पहले अपने बच्चे का टेम्परेचर चेक करें। दूसरी बात है, अच्छे काम पर उनको शाबाश दें, इनकी मेहनत पर दाद दें, दूसरों से मुकाबला और मवाजना ना करें। और अगर कोई गलती इनसे हो जाए तो माफ़ कर दीजिए। हजरत यूसुफ और याकूब अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों की मिसालें मौजूद हैं। किसी भी काम से पहले उनको अच्छी तरह से समझाइए और अपने बच्चे के अंदर छुपा हुआ टैलेंट, उसकी स्किल्स को डिस्कवर करें, उसकी अच्छाइयों पर नज़र रखें। फिर अपने बच्चों को खिदमत खल्क के तरीके सिखाइए। ये तो बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, कभी इस पर तफसील से बात करेंगे। बच्चे अल्लाह की नेमत, इनकी कदर कीजिए। इन शॉर्ट, प्यार, इज्जत, एतमाद और वक्त दीजिए। ये चीज़ें आपके बच्चों को एक अच्छा शहरी बनाएंगे। अब आखिरी सवाल जो आपके जहनों में होगा, क्या हम अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं कर सके, अब वो बड़े हो गए, अब क्या करें? माफ़ी मांगे। आज जाकर घर में मुनासिब मौका देकर अपने टीन एजर बच्चे और बच्चियों को साथ बिठाएं और उन्हें बोलें कि बेटा, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैंने आपकी अच्छी तरबियत नहीं की, या मैंने आपका हक नहीं दिया, मैंने आपको वो कुरान का पैगाम नहीं दिया जो देना था, आओ हम मिलकर काम शुरू करते हैं। यकीन करें, इस एक्टिविटी के बाद जवान बच्चों को रोते हुए देखा है। अल्लाह ताला आपकी और मेरी इस्लाह फरमाए, हम अपने बच्चों की भी इस्लाह कर सकें। आखिर में आप सब मेरे साथ एक दुआ ऊंची आवाज में मांग लें। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ऐ अल्लाह, हमारी औलादों और हमारे शौहरों और बीवियों को हमारी आंखों की ठंडक बना और हमको परहेजगारों का इमाम बना। ऐ अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमें अपने औलादों की कदर की तौफीक अता फरमा, हम अपने बच्चों के जज्बात को मजरूह ना करें। ऐ अल्लाह, हमें इस बात की तौफीक दे कि हम अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर ना करें, हम उनको किसी भी एहसास से महरूमी में ना डालें। या अल्लाह, हमें अपनी जवान बच्चियों को अपने साथ लेकर चलने वाला बना। یا اللہ ہمیں اپنے وقت کو بہترین طریقے سے تین حصوں میں بانٹ کر اپنے ہر بچے کو ون بائی ون کم از کم 15 منٹ روز دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کے دلوں کی جو دکھ ہیں کوئی پریشانی ہے اس کو سننے والا بنا, ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی بنا, فرینڈس نہیں. یا اللہ ہم ان کے ساتھ ایسے بے تکلف نہ ہوں کہ وہ ہماری بات بھی نہ مانیں اور وہ ہم سے اتنا بھی نہ ڈریں کہ کہیں وہ اپنے دل کی باتیں نہ کہہ سکیں, اور سب سے بڑی بات کمیونیکیشن گیپ اللہ ختم کر دے. اللہ تعالیٰ بیریئرز کو بریجز بنا دے, ہمارے بچوں کے ذہنوں کی جو الجھی ہوئی ڈوریاں ہیں یا اللہ ان کو سلجھا دے. یا اللہ اس دور کے جو فتنے ہیں جن سے یہ بچے گزرتے ہیں, یا اللہ ہم ماں باپ کو ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنے بچوں پہ چیخیں نہیں, چلائیں نہیں, ان کو دھمکائیں نہیں. یا اللہ ہم اپنے بچوں کے بہت زیادہ لاڈ نہ کریں. یا اللہ ہم ان کے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے ماحول کو نظر انداز نہ کریں. اگر ہم نے ان کو ایسی جگہوں پہ ڈال ہی دیا ہے تو یا اللہ پھر ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کونسلنگ کر کے ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جو ہم اپنی پچھلی زندگی میں کمیاں کر چکے اس پہ ہمارے بچوں کے بھی دلوں میں نرمی ڈال دے, اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم مل جل کر اپنی ان ساری چیزوں کی اصلاح فرمائیں. جتنی بھی ساتھی بیٹھی ہیں ان سب کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں. اور یا اللہ جو بن بیاہ ہیں ان کے نیک جوڑ ملا دے. اور یا اللہ جو نمازی نہیں ان کو نماز کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے دنیا سے جانے سے پہلے پہلے اپنے بچوں کی نیکیوں کو دیکھیں اور ہم خوشی سے رو پڑیں اور اس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن ہو, ان کے سینوں میں قرآن ہو, ان کا ادب اور اخلاق بہترین ہو. یا اللہ ہم یہ جو غلطی کرتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو کوئی غلطی ہی نہیں کرنے دیتے, ہمیں اس سے بچا, کیونکہ بچے بھی اور بڑے بھی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. اور یا اللہ ایک خاص چیز جو میں نے ذکر نہیں کی, منی مینجمنٹ. ہم اپنے بچوں کو پیسے جمع کرنے یا خرچ کرنے کا سلیقہ نہیں سکھاتے, جس کی وجہ سے جب ان کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو وہ بیکاریات میں ڈال دیتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو مالی معاملات کی بھی سمجھ بوجھ عطا فرما, اور اگر جہاں کبھی ہمارے بچے پہ کوئی زیادتی کرے تو ہمیں اس کے حق میں کھڑا ہونے والا بنا, اور ان کو کامیاب ترین لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ان کے دماغوں پہ صرف پڑھنا اور پڑھانا نہیں بلکہ ان کی زندگی کے بہترین طریقے بھی سکھا دیں والے میں شامل کر دیں. اور یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اتنا پیارا تعلق دے دے کہ وہ سوشل میڈیا اور اس طرح نیٹ اور فون پہ زیادہ وقت گزارنے کی بجائے ہماری کمپنی میں بیٹھنا پسند کر لیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجھک وعظیم سلطانک. آج کی محفل میں جس نے ایک لفظ سے بھی ہاتھ ڈالا, جان سے, مال سے, وقت سے, یا اللہ ان کا یہ قبول فرما اور ہم سب کو اس سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنا دے. جزاکم اللہ خیر.